आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पार्ट 10, नेताजी का चश्मा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। पहले हम इन्हीं के बारे में यानी लेखक का परिचय पढ़ेंगे और फिर हम कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने अपने बुक्स के पेज नंबर 59 पर आ जाइए। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं, ठीक है? तो ये जो स्वयं प्रकाश जी हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी एक कंपनी में इन्होंने नौकरी की और वही पढ़ाई और अपनी नौकरी के कारण इनका जो अधिकतर समय है वो कहाँ बीता? राजस्थान में। और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलेंटियरली रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से रिटायर होने के बाद अब वो कहाँ हैं? भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से यानी एडिटिंग वाले वर्क से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। 8वें दशक में ये कब उभरे थे? 8वें दशक में उभरे और समकालीन कहानी का जो दौर था उसमें महत्वपूर्ण लोगों में इनका नाम गिना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो 13 कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं, यानी इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और उन्हें अलग अलग संग्रहों में प्रकाशित किया गया है। उन 13 कहानी संग्रहों में से कुछ मुख्य नाम यहाँ दिए गए हैं, जो हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। इसके साथ ही ईंधन और बीच में विनय, ये कुछ उनके प्रमुख और चर्चित उपन्यास हैं। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है स्टूडेंट्स, जैसे पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। मध्यवर्गीय जीवन यानी हमारे समाज में जो मिडिल क्लास आदमी है वो कैसे रहता है ना, या जो निम्न वर्ग है उसका कैसे शोषण होता है, ये सारी चीजें इनकी रचनाओं में, उनकी कहानियों में हमें देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ विरोध का स्वर भी इनकी रचनाओं में है। इसके साथ ही इनकी जो कहानियां होती हैं वो किस्सा गोई शैली में लिखी गई होती हैं, यानी जैसे कोई किस्सा सुना रहा हो, और ये हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक परंपरा यानी हिंदी की ये परंपरा रही है कि हम कहानियां बहुत समय से कहते आ रहे हैं ना, माई दादी नानी कहानियां कहती हैं, बच्चे सुनते हैं, हम एक दूसरे को हमेशा कहानियां सुनाते हैं, एक दूसरे को अपने किस्से सुनाते हैं, कोई ना कोई घटना या प्रसंग सुनाते हैं। तो यही जो है, इसी तरीके से इन्होंने भी कहानियां लिखी हैं ताकि आम जन जो है वो इनकी कहानियों से आसानी से जुड़ सके। अब हम पाठ परिचय देख लेते हैं। नेताजी का चश्मा जो कहानी है इसके बारे में, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। क्या मानते हैं कि केवल एक जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर से घिरा हो, जिसकी सीमाएं निर्धारित हो, वही देश नहीं होता है, बल्कि देश क्या होता है, उसमें रहने वाले नागरिक, है ना, जो लोग हैं वहां के, जो निवासी हैं वहां की, जो प्रकृति है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो भी आसपास है, ये सब मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, घर जो होता है वो ईंटों से और सीमेंट से इकट्ठा करके नहीं बनता, उसमें रहने वाले परिवार से बनता है। वैसे ही हमारा जो देश है वो यहाँ रहने वाले लोगों से, नागरिकों से, प्रकृति से, पशु पक्षियों से, सबसे मिलकर बनता है। और इनसे अगर हम प्रेम करते हैं, इनकी समृद्धि के लिए कार्य करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं, तो यही देशभक्ति कहलाते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो देश में जो नागरिकों का योगदान है उसके महत्व को बताती है कि कैसे नागरिक अपना योगदान दे सकते हैं, और इसमें बड़े लोग ही नहीं बल्कि बच्चों का योगदान भी होना चाहिए। अब पेज नंबर 60 पर आइए, कहानी शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका भी थी। तो हालदार साहब यानी हवलदार के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, देशज शब्द है, यानी आंचलिक तरीके से जो बोला जाता है हवलदार को, हालदार, है ना। तो ये जो हवलदार साहब हैं वो अपने कंपनी के काम से हर 15वें दिन यानी महीने में दो बार एक कस्बा था वहां से गुजरते थे, उनका चक्कर लगता था और कस्बे में उनकी नजर अक्सर पड़ती थी। वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बे का वर्णन करते हुए लेखक बता रहे हैं, अगर पक्के मकान की बात करें तो कुछ ही मकान वहां पक्के थे, और जिसे बाजार कहा जा सके यानी बाजार के नाम पे एक ही बाजार था, वहां एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना एक फैक्ट्री जैसी थी, और दो ओपन एयर सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो वो क्या कह रहे हैं, वहां नगर पालिका भी थी, है ना। अब जब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी थी, यानी जब नगर पालिका बनाई गई है एक नगर के लिए तो कुछ ना कुछ कार्य भी करेगी। तो क्या क्या काम करती थी, जैसे कभी कोई सड़क बनवा दी, है ना, कभी पेशाब घर बनवा दिए जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी शहर के निवासियों के लिए कोई कभी सम्मेलन आयोजित करवा दिया, है ना, इस तरह कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो वही लेखक कह रहे हैं, ऐसे ही नगर पालिका के कोई उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, यानी कोई नगर पालिका के अधिकारी रहे होंगे जो इतने उत्साही थे कि उन्होंने जो बाजार था उसके जो मुख्य चौराहा था वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र की एक प्रतिमा बनवाई। प्रतिमा किसकी थी, संगमरमर की। और ये जो कहानी है नेताजी का चश्मा, ये उसी प्रतिमा के बारे में यानी उसी मूर्ति के बारे में है, और बल्कि उस मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से, छोटे से भाग के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मोती बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब वो क्या बता, यहाँ पे देखिए इस अनुच्छेद में आपको व्यंग दिखेगा लेखक का, कि वो क्या कह रहे हैं, मूर्ति को देख के ऐसा लगता है कि शायद जो हमारी नगर पालिका है, जो सरकारी व्यवस्था है, उसे देश के अच्छे मूर्तिकारों के बारे में शायद जानकारी नहीं होगी। यानी मूर्ति जो है वो उस तरह से नहीं बनी थी जैसे बननी चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पे अब कभी अब अनुमान लगाते हुए क्या कह रहे हैं कि या तो हो सकता है कि उन्हें अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ही ना हो, या फिर अच्छी मूर्ति की जो लागत है ना, जो उसमें रुपए लगेगा, वो हमारे बजट से ऊपर जा रहा हो, इस कारण ना बन पाई हो। बहुत देर ऊहा पुहा हो, यानी बहुत चर्चा हुई होगी, परेशान रहे होंगे, चिट्ठी पत्री। यहाँ पे व्यंग दिखता है, सरकारी व्यवस्थाओं में अक्सर यहाँ से वहां पत्र लिखना, यहाँ से वहां फाइलें भेजना, ये काम चलता रहता है। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, और जब कोई निर्णय नहीं ले पाया गया होगा तो आखिरकार क्या किया गया कि जो वहाँ हाई स्कूल था कस्बे में, उसके इकलौते ड्राइंग मास्टर, यानी एक ही हाई स्कूल था उसमें एक ही ड्राइंग के टीचर थे मोतीलाल जी, उनको ये काम सौंप दिया गया होगा, जो कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी उन्होंने क्या कहा था कि एक महीने में कैसे भी मैं मूर्ति बनाकर दे दूंगा, और वाकई उन्होंने मूर्ति बनाकर दे दी, लेकिन कैसी दी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। आगे देखिए थर्ड पैराग्राफ, तीसरा अनुच्छेद। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नाक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फर्जी वर्दी में, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब क्या वो बता रहे हैं कि मूर्ति जो है ना, क्योंकि वो संगमरमर की थी बताया है, बहुत ही सुंदर थी। कितनी बड़ी थी? 2 फुट ऊंची। टोपी की नाक, यानी जो सुभाष चंद्र बोस जी का अगर आपने चित्र देखा हो तो आपको पता होगा कि वो टोपी पहनते थे, तो वही उनकी टोपी की नोक से लेकर उनके कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति बनाई गई थी। 2 फुट की थी और बहुत ही सुंदर थी। नेताजी भी उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे, मासूम से मालूम पड़ते थे फौजी वर्दी में, क्योंकि वो हमेशा फौजी वर्दी पहनते थे। और उस मूर्ति को देखते ही मन में उनके दिए हुए नारे ध्यान आने लगते थे, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका नारा था, दिल्ली चलो, ये सारी बातें याद आने लगती थी। और अगर कोई मूर्ति देख के किसी की बातें, किसी के नारे याद आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक सफल प्रयास है, है ना। यानी मूर्ति बनाने की कोशिश बहुत ही अच्छी थी, मूर्ति अच्छे से बनाई गई थी, लेकिन एक चीज खटकती थी हमेशा हवलदार साहब को। क्या खटकती थी? होता है ना, किसी चीज में कोई चीज बहुत अच्छी बनी है लेकिन कुछ कमी है, तो हमारा ध्यान वहीं जाता है। वही उस मूर्ति के साथ था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब चश्मा तो था लेकिन जब मूर्ति संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए था, चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। पेज नंबर 61 पर आ जाइए। यानी एक साधारण से और सच के दिखने वाले जो चश्मा होता है, काले फ्रेम का चौड़ा सा चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी पूरी मूर्ति संगमरमर से तैयार की, लेकिन चश्मा संगमरमर से ना बनवा के असली का चश्मा ही उस मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस ओर लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब जो हवलदार साहब हैं वो पहली बार इस कस्बे से गुजरे थे, है ना, क्योंकि वो अब तो अक्सर गुजरते हैं, तो वो कहानी बता रहे हैं कि जब वो पहली बार गुजरे थे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उनकी नजर अचानक से उस मूर्ति पर पड़ी, और जब उन्होंने देखा कि मूर्ति संगमरमर की है लेकिन उसने असली चश्मा पहना हुआ है, तो उनके कौतुक भरी, यानी वो एक जिज्ञासा सी जाग गई, वो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और उन्होंने क्या सोचा कि ये आइडिया भी, यानी ये तरीका भी सही है कि मूर्ति जो है वो तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है, यानी चश्मा तो सचमुच का है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाएगा। और सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी हवलदार साहब की जो जीप थी, जब वो आगे बढ़ गई कस्बे से, वो बाहर निकल गए, तब भी वो बात उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी, है ना। जो मूर्ति का दृश्य उन्होंने देखा था, कहीं ना कहीं वो उसी चीज को दोहरा रहे थे। उनके दिमाग में बार बार वही बात आ रही थी कि मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा सचमुच का। और जब वो ऐसे सोचते रहे रास्ते भर, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी आखिरकार ये परिणाम उन्होंने निकाला कि कुछ भी कहो, कुल मिलाकर जो नागरिक है वहां कस्बे के, उनका प्रयास सराहनीय, यानी तारीफ करने लायक कोशिश है उनकी, कि मूर्ति का रंग रूप कद ये सब मायने नहीं रखता, उन्हें भावना जो उनकी है वो देखी जानी चाहिए। उनमें उन्होंने कद्र है कि हमारे जो नेताजी थे वो चश्मा पहनते थे, तो वैसे ही दिखने चाहिए। और उन्होंने अगर उसने असली का चश्मा पहना दिया, तो इस भावना की, इस देशभक्ति की भावना की भी तारीफ करी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोग देशभक्ति को मजाक में ले लेते हैं, उसे कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हवलदार साहब जब दोबारा वहां से निकले, तो फिर से उनका ध्यान उस मूर्ति पे गया, और तब उन्होंने क्या देखा कि अब मूर्ति पे दूसरा चश्मा है। पहली बार जो चश्मा देखा था वो मोटे चौड़े फ्रेम का चश्मा था और चौकोर चश्मा था, लेकिन अब तार के फ्रेम वाला, यानी जिसका पतला सा फ्रेम हो ना वैसा, और गोल गोल चश्मा है। तो अब उनका जो कौतिक था, जो जिज्ञासा थी उनके अंदर, वो और बढ़ गई। उन्होंने कहा, वाह भाई, क्या लोग हैं इस जगह के, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या हुआ, चश्मा तो बदल ही सकती है। और तीसरी बार अब फिर नया चश्मा था। जब वो तीसरी बार वहां से गुजरे, तो उन्हें फिर से नया चश्मा दिखाई दिया। तो अब बार बार चश्मे जब वो बदलते हुए देख रहे थे, तो हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? क्योंकि उन्हें पहली बार अलग चश्मा दिखा, दूसरी बार अलग चश्मा दिखा, तीसरी बार फिर से अलग नया चश्मा दिखा, तो हवलदार साहब को ये बड़ा रोचक सा लगा, है ना। तो अब उनकी आदत क्या बन गई कि जब भी वो कस्बे से गुजरते थे, तो एक बार वहां चौराहे पे अवश्य रुकते थे, वहां रुककर पान खाते थे, नेताजी को ध्यान से देखते थे और उनके चश्मे को देखते थे। ये जिज्ञासा, ये कौतूहल जो था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कि होता है ना, अगर आपको कोई चीज हर बार नहीं मिल रही है, तो आपको लगता है जाने से पहले आज क्या नया होगा वहां, वही उनके साथ हो रहा था, हवलदार साहब के साथ, कि आज देखता हूं, आज भी क्या चश्मा बदला हुआ होगा, और अगर बदला हुआ होगा तो कैसा होगा। और हर बार उन्हें चश्मा कुछ अलग, कुछ बदला हुआ ही मिलता था। तो जब ये जो चश्मा है बदलने लगा बार बार, उनका कौतूहल, उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने एक बार जो पान वाला था उससे पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, ये जो नेताजी का चश्मा है, ये हर बार कैसे बदल जाता है, यानी मैं जब भी यहां से गुजरता हूं, तो मुझे हर बार नया चश्मा देखने को कैसे मिलता है। अब पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब को समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब देखिए, जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, तो पान वाले का पहले लेखक ने चित्रण किया कि वो दिखने में कैसा था। एक काला सा, मोटा सा आदमी था, खुश मिजाज, यानी हमेशा खुश रहने वाला, खुश दिल इंसान, दूसरों को भी खुश करने वाला इंसान था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पहले उसे हंसी आई, तोंद थिरकी, क्योंकि वो मोटा व्यक्ति था, तो तोंद उसकी हिली। जब हम हंसते हैं तो हमारा शरीर हिलता है ना, वैसे ही। और फिर क्योंकि वो पान खा रहा था, तो जो उसकी बत्तीसी किसे कहते हैं, हमारे दांतों को, यानी 32 दांत होते हैं, इसलिए उसे बत्तीसी कहते हैं। तो अपनी बत्तीसी, जो कि पान की वजह से लाल काली हो गई थी, उसे दिखाकर उसने बोला, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब को समझ नहीं आया कुछ, उन्होंने कहा, क्या करता है? तो पान वाले ने कहा, वो चश्मा चेंज कर देता है, यानी चश्मा बार बार बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो अब वो बोले, अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैप्टन चश्मे वाला क्यों ऐसे करता है। तो तब उन्हें क्या समझाया पान वाले ने कि कोई ग्राहक, ये भी देखिए देशज शब्द है, आंचलिक शब्द है, गांव की भाषा में ग्राहक को ग्राहक लिखा गया है कि समझिए कि कोई ग्राहक आ गया है ना, यानी कोई चश्मे को लेने वाला कोई खरीदार आ गया और उसको चौड़े चौखट का यानी चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। तो क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला, मूर्ति वाला चश्मा दिखा देता है। अगर उसे वो पसंद आ जाता है तो वो मूर्ति से उतार कर चौड़े फ्रेम का चश्मा अपने ग्राहक को दे देता है, खरीदने वाले को दे देता है और उधर कोई दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ठीक है, तो अब क्या समझ में आना शुरू हुआ हवलदार साहब को कि ये काम कौन करता है, एक चश्मे वाला जिसका नाम है कैप्टन, कैप्टन चश्मे वाला है ना, तो उसको नेताजी की बगैर चश्मे की यानी चश्मे के बिना मूर्ति बहुत बुरी लगती है, उसे आहत करती है यानी उसे दुख देती है कि मेरे नेता, हमारे देश के नेताजी बिना चश्मे के क्यों है, क्योंकि हमने हमेशा से हर चित्र में हर फोटो में यही देखा है कि सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा लगाते हैं, तो उनकी मूर्ति के जब चश्मा नहीं लगा है तो उसको बुरा लगता है, उसे लगता है कि नेताजी को कोई असुविधा हो रही होगी, मुश्किल महसूस हो रही होगी, इसलिए वो उसकी छोटी दुकान में जितने भी चश्मे उपलब्ध हैं, जितने भी चश्मे वहां मौजूद हैं, उनमें से कोई ना कोई निकाल कर वो हमेशा मूर्ति पर फिट करता रहता है कि कौन सा उनके चेहरे पर अच्छा लगेगा, उस हिसाब से वो बार बार उनके चश्मे पर उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। अब अवलदार जी क्या सोचते हैं कि उसको मूर्ति बिना चश्मे के बुरी लगती है, इसलिए वो हमेशा कोई ना कोई चश्मा उनको पहना कर रखता है। लेकिन जब ग्राहक आता है और उसको वैसे ही चश्मे की जरूरत या वैसे ही चश्मे का मन होता है, तो वो नेताजी के पास जाके, क्योंकि अब उन्होंने क्या कहा, उनसे क्षमा मांगते हुए चश्मा उतारता हुआ, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति है ना। जब उसे ये लग सकता है कि नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा ना हो या मेरे नेताजी बिना चश्मे के अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो उन्हें चश्मा पहनाता रहता है। तो चश्मा उतारते समय भी वो उनसे क्षमा अवश्य मांगता होगा कि मुझे माफ कर दीजिए, और वो चश्मा ग्राहक को देखकर वो उनको तुरंत ही दूसरा चश्मा पहना देता होगा। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। पेज नंबर 62 पर आइए। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोन थिरकी, कत्ते की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब जो हवलदार साहब थे, क्योंकि वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो उनके दिमाग में फिर से एक प्रश्न आता है, फिर से सवाल उठता है कि ये सब तो ठीक है, ये तो मुझे घटना समझ में आ गई कि कैप्टन क्या करता है, बार बार चश्मे बदल देता है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इनका ओरिजिनल यानी असली में इनका चश्मा कहाँ है। मूर्ति बनाई है तो मूर्ति का चश्मा भी होना चाहिए। तो पान वाला जो दूसरा पान खा चुका था, वो पान को थूक कर फिर से उन्हें बताता है हंसते हुए कि जो मास्टर है वो बनाना ही भूल गया, यानी जिसने मूर्ति बनाई है उसने चश्मा बनाया ही नहीं। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, अब पान वाले को तो हंसी आ रही थी है ना, उसके लिए तो मजेदार बात थी कि बताओ मूर्ति बनाई और चश्मा ही नहीं बनाया। लेकिन हवलदार साहब क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक थे तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, वो चकित हो गए, यानी उन्हें आश्चर्य भी हुआ और द्रवित भी हुए, उन्हें बेचैनी महसूस हुई, व्याकुल हो गए। तो वो कहने लगे, अब उनके दिमाग में ना तरह तरह के विचार आने लगे, अलग अलग बातें आने लगी। वो सोचने लगे कि यानी मैं तो ठीक सोच रहा था, मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, यानी ये वाकई में, मैंने तो अंदाजा लगाया था कि कस्बे का कोई अध्यापक होगा, लेकिन ये तो वाकई में कस्बे का जो स्कूल है उसके ड्राइंग के अध्यापक ही हैं। उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाने के लिए कहा था, मूर्ति बना ली, लेकिन चश्मा क्यों नहीं बनाया। अब इसको लेके बहुत तरह तरह के अनुमान लगाते हैं कि वो पत्थर में पारदर्शी चश्मा नहीं बना पाए होंगे, कांच वाला चश्मा कैसे फिट करें समझ नहीं आया होगा, और अगर बना लिया होगा तो कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा या उनका ध्यान नहीं गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो वो निकल गया होगा। उफ, यानी बहुत सारे विचार आ रहे हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है असली बात। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वालों की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ये सब जो चीजें उन्होंने देखी हैं और उन्हें जो सुना हवलदार साहब को, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, विचित्र यानी अजीब लग रहा था, कौतुक भरा यानी जिज्ञासा भी जाग रही थी कि ये सब क्या और क्यों है। तो उनके मन में इसलिए बार बार अलग अलग विचार आ रहे थे, अलग अलग प्रश्न आ रहे थे। तो इन्हीं सब बातों को, इन्हीं ख्यालों में खोते हुए वो पैन, जो पान उन्होंने खाया उसके पैसे देकर वो आगे बढ़ जाते हैं। और चश्मे वाले को जो इतनी कद्र है एक मूर्ति की, उसको देशभक्ति समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जो हमारे देश है इसके लोगों से प्यार करना ही देशभक्ति है। तो वो चश्मे वाले की देशभक्ति को नतमस्तक होते हैं, यानी प्रणाम करते हैं और अपनी जीप की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीप तक पहुंचते हैं एक नई बात उनके दिमाग में आ जाती है और वो वापस पीछे मुड़ के पान वाले के पास आते हैं और फिर उससे क्या पूछते हैं कि जो कैप्टन चश्मे वाला है ये कोई नेताजी का साथी है, मतलब उन्हें जानता था, या फिर आजाद हिंद फौज जिसका निर्माण नेताजी ने किया था उसका कोई भूतपूर्व सिपाही रहा हो, कैसे इसको इतनी आत्मीयता, इतनी लगाव, इतनी आत्मीयता क्यों है नेताजी से। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े और हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब वो जब वो दोबारा पान वाले से पूछने गए तो पहले वो दो पान खा चुका था, अब तीसरे पान को मुंह में डालने वाला था, लेकिन हवलदार साहब के प्रश्न को सुनकर वही रुक गया और मुंह के बाहर ही, देखिए कितनी बारीकी से लेखक ने बताया कि मुंह के 1.5 इंच बाहर पान को रोककर हवलदार साहब को उसने ध्यान से देखा, फिर से हंसा और अपनी लाल बत्ती सी दिखाते हुए बोला कि नहीं नहीं वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी वो तो लंगड़ा है, वो तो पागल है ना, ऐसे लोगों को अक्सर लोग पागल ही कहते हैं जो किसी चीज के लिए ज्यादा समर्पित होते हैं, जैसे कैप्टन चश्मे वाला देश के लिए था, ऐसे लोगों को लोग पागल कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, वो देखिए वो आ रहा है, आप उससे बात कर लीजिए, और अगर आप उससे इतने प्रभावित हो रहे हैं, आपको वो इतना अच्छा लग रहा है, तो उसकी कहीं फोटो वोटो छपवा दो, आपकी तो बहुत जान पहचान है, आप उसी से बात कर लो, ठीक है। इतना कह के पान वाली अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता है। तो यहां तक हमने कहानी जो है नेताजी का चश्मा वो पढ़ ली। अब जो बची हुई कहानी है स्टूडेंट्स, उसको हम अगले ऑडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी कहानी अगले ऑडियो में।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।